对不对？الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم نیند کا نظام، سلیپ مینجمنٹ پڑھتے ہیں اپنے حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ دروس امور خانداری میں حسن انتظام میں سے، اس سلسلے میں سے یہ تیسرا بیان ہے. پہلا ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ ہم نے پڑھا، پڑھ کے مکمل کیا، اور پھر ریلیشن شپ مینجمنٹ، اور تیسرا جو ہے وہ نیند کا نظام، سلیپ مینجمنٹ. تو اس میں ہم آخری ہی بس موضوعات پڑھ رہے تھے، عنوانات پڑھ رہے تھے. تو ان میں جو آخری بات ہم نے پڑھی تھی وہ تھی کہ سلیپ مینجمنٹ، نیند کا نظام یہ ہے کہ انسان عشاء کے بعد جلدی سوئے تاکہ تہجد پڑھ سکے اور فجر قضا نہ ہو. جس بندے نے عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت پر بھی عمل کر لیا، جس بندے نے تہجد پڑھنے والی سنت پر بھی عمل کر لیا، اور جس بندے نے فجر کی نماز بھی اپنے وقت پر ادا کر لی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں سلیپ مینجمنٹ کا عمل سیکھ لیا. تو حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ہم اگر بریک ڈاؤن کریں کہ سلیپ مینجمنٹ کے لیے تین چیزیں فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی چیز کیا کہ عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت. ٹھیک ہے، تو سلیپ مینجمنٹ میں پہلی سنت یا سلیپ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ پہلی سنت، کیونکہ سنتیں تو بہت ساری ہیں، کھانے سے ریلیٹڈ سنت ہے، لباس سے ریلیٹڈ سنت ہے، اور اخلاقیات سے ریلیٹڈ سنتیں ہیں، اور بہت ساری سنتیں ہیں. نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے محفوظ فرما دی، اسی کو تو سنت کہا جاتا ہے نا. تو سلیپ سے ریلیٹڈ سنتیں کیا ہیں؟ یہ تہجد، سوری، عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت. ٹھیک ہے بھائی، ہے نا، یہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. اچھا، پھر دوسری سنت سلیپ سے ریلیٹڈ کہ تہجد پڑھنے والی سنت. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں تھوڑا سا اور. تیسری سنت یہ کہ نے فجر کی نماز بھی اپنے وقت پر ادا کر لی. ٹھیک ہے، اب فجر کی نماز ویسے تو فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن سلیپ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ نبی علیہ السلام کا جو عمل کہا جائے گا وہ فجر کی نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے نا یہ ایک کہ یہ جو ہے نا سلیپ مینجمنٹ، پھر کسی ایک چیز کو نہیں کہا جائے گا کہ بھئی تہجد کی نماز پڑھ لی تو سلیپ مینجمنٹ والی سنت پہ عمل ہو گیا، یا جو ہے وہ رات کو جلدی سو گئے تو پھر سلیپ مینجمنٹ والی سنت پہ عمل ہو گیا، یا یہ کہ فجر کی نماز پڑھ لی تو سلیپ مینجمنٹ والی سنت پہ عمل ہو گیا، بلکہ سلیپ سے ریلیٹڈ یہ تینوں سنتیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سے کسی ایک کو ہم سنگل آؤٹ اگر کرتے ہیں تو پھر وہ سلیپ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ مکمل سنت نہیں بنے گی نا، پھر وہ سلیپ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ناقص سنت بنے گی. ٹھیک ہے، بے شک ٹھیک ہے کہ ہم سے پوری سنت پہ عمل ہو نہیں رہا، ہم کمزور ہیں. ٹھیک ہے، ہم کمزور ہیں تو اس وجہ سے ہم پوری سنت پہ عمل کر نہیں پا رہے، تو یہ تو پھر ایک ریئلائزیشن ہے نا، یہ تو پھر ایک یعنی سوچ ہے نا یہ کہ بھئی ہم سے پوری پہ عمل نہیں ہو پا رہا. لیکن یہ کہنا شروع کر دینا کہ ہم نے کسی ایک پہ عمل کر لیا تو ہم نے پوری سنت پہ عمل کر لیا، تو یہ تو غلط ہوا نا پھر. ٹھیک ہے، کہ کسی ایک پہ عمل کر کے यानी इस पूरे साइकिल में से या इस पूरे में से किसी एक पे अमल करके क्या आना शुरू कर दिया कि मैंने पूरी सुन्नत पे अमल कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लिबास में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है, सर को ढांकना, ठीक है, घर से बाहर निकलते हुए इमामा पहनना, घर के अंदर जो है वो तहबंद पहनना, ठीक है, और जो है वो ढीला लिबास पहनना, चुस्त लिबास न पहनना, ठीक है, और जो इजार है वो टखनों से ऊंचा रखना, ठीक है, और इसके अलावा सफेद लिबास पहनना, कभी जो है वो दूसरे रंग का भी लिबास पहनना। तो ये सारी चीजें लिबास से रिलेटेड सुन्नत है ना। अब कोई शख्स जो है वो सिर्फ टोपी पहने और लिबास बाकी लिबास जो है वो फरंगियों जैसा, यूरोपियंस जैसा, ठीक है, और फिर वो ये कहना शुरू कर दे कि मैंने टोपी पहन के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे मुकम्मल अमल कर लिया, तो ये गलत होगा ना कि नहीं होगा, ठीक है, कि भाई आपने तो सिर्फ टोपी पहनी है और बाकी जो है वो तो आप दूसरों की मुशाबियत इख्तियार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपने नबी अलैहिस्सलाम की चलो एक टोपी वाली सुन्नत पे तो अमल कर लिया या सर ढकने वाली सुन्नत पे अमल कर लिया, लेकिन आप इसके ऊपर ये तो ढंडोरा ना पीटे ना कि आपने सारी सुन्नत पे अमल कर लिया, ठीक है। तो यही बात जो है वो पिछली क्लास में भी समझाई थी, फिर उसके बाद हमने आखिर में जो है ना, यानी ये बात समझाई थी ना कि भाई आप इस तरह से पिक एंड चूज करके जो है ना वो पूरी की पूरी सुन्नत का अपने आप को धोखा नहीं दे सकते ना, ढंडोरा नहीं पीट सकते, ठीक है भाई, तौबा नदामत, ठीक है, कि भाई मुझसे हो नहीं रहा, मैं कमजोर हूं। तो जब इस तरीके से इंसान नादम होता है अपने किसी गलत फेल के ऊपर या किसी नाकिस फेल के ऊपर, कभी पूरा नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है, अगरचे कि खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं फराइज को नहीं तोड़ रहा, तो इस वजह से वो वाला गुनाह तो मेरे ऊपर नहीं है कि मैं फराइज को तोड़ रहा हूं, लेकिन सुन्नतों में भी मैं नाकिस अमल कर रहा हूं, मुकम्मल सुन्नत पर अमल नहीं कर रहा, तो दिल में एक कसक होना इसकी, एक ख्याल होना इसका कि भाई इससे हो नहीं पा रहा, मुझे करना चाहिए, और अल्लाह से दुआएं मांगे, ठीक है, तो इसके ऊपर फिर अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि भाई अल्लाह ताला हो सकता है पूरे का सवाब अता फरमा दे, ठीक है, या पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे, ठीक है, लेकिन आप चेंज तो नहीं कर सकते ना, आप पिक एंड चूज करके और जो है वो नाकिस को जो है वो कामिल तो नहीं कह सकते ना, ठीक है, नाकिस को कामिल नहीं कह सकते, उसी तरीके से असफल को अफजल नहीं कह सकते, असफल यानी कम दर्जे की चीज, नीचे वाली चीज, और अफजल होती है ऊपर दर्जे की चीज, उसको आप अफजल नहीं कह सकते, तो अफजल ही रहेगी और नीचे वाली चीज जो है वो नीचे वाली चीज ही रहेगी, ठीक है। तो इसी के तहत जो है वो आपसे हमने एक सवाल आखिर क्लास में, पिछली क्लास के आखिर में किसी ने सवाल भेजा था कि भाई हाउ डू वी मैनेज आवर स्लीप स्केड्यूल्स टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड वेक अप फॉर तहज्जुद इफ यू लिव इन अ कंट्री दैट हैज वेरी शॉर्ट समर नाइट्स सच एज इन द US वेयर द नाइट इज लेस देन 6 आवर्स एंड दस इशा स्टार्ट्स लेट एज वेल, के जो जिनका जिन इलाकों का लैटिट्यूड जो होता है वो ऊंचा होता है, ऊपर की तरफ होते हैं, तो वहां पर जो है ना वो समर नाइट्स जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, तो इशा का वक्त ही बहुत देर में दाखिल होता है और फजर का वक्त जो है वो बहुत जल्दी दाखिल हो जाता है, तो आपकी तो नींद ही पूरी नहीं होती, तो फिर आप तहज्जुद कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपकी नींद ही पूरी नहीं हो सकती, आप सेहत अपना कैसे, सेहत का कैसे ख्याल रखें, और जो है फिर तहज्जुद की कैसे आप अदायगी करें, ठीक है, तो उसका जो जवाब जो था ना वो हमने पिछली क्लास के आखिर में जो दिया था ना, तो वो हमने हजरत की इस इबारत को ही सामने रख करके दिया था, ठीक है ना, जो इबारत उसी वक्त पढ़ी थी हमने क्लास के अंदर, वो इबारत क्या थी जो अभी पढ़ी दोबारा से, कि जिस बंदे ने इशा के बाद जल्दी सोने वाली सुन्नत पर भी अमल कर लिया, जिस बंदे ने तहज्जुद पढ़ने वाली सुन्नत पर भी अमल कर लिया, और जिस बंदे ने फजर की नमाज भी अपने वक्त पर अदा कर ली, ठीक है, तो अब इस इबारत के तहत जो तहज्जुद का मफहूम सामने आता है वो क्या, कि रात को इशा के बाद सो गए, फिर उसके बाद जो है ना वो फजर से पहले उठ गए और फिर नमाज पढ़ी तहज्जुद की, ठीक है ना, या किसी के जहन में कोई और मफहूम आता है इस इबारत को पढ़ कर, ठीक है, तो इस इबारत को पढ़ के तो यही मफहूम आता है ना कि इशा के बाद आप सो गए
और सो करके फिर आप उठे और फिर आपने तहज्जुद पढ़ी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो तहज्जुद बैन नौमैन वाली की बात पढ़ी थी कि फिर आप थोड़ी देर के लिए और सो गए और फिर उठ करके फजर पढ़ी, ठीक है। तो ये जो तहज्जुद का मफहूम है ना, मशायख जब तहज्जुद की तलकीनें किया करते हैं ना, तो वो इसी तहज्जुद की तलकीन करते हैं, ठीक है, या किसी को शक है इस बात के ऊपर? मशायख जब तहज्जुद की तलकीन करते हैं कि भाई तहज्जुद पढ़नी चाहिए, तहज्जुद पढ़नी चाहिए, तो वो किस तहज्जुद की तलकीन करते हैं? इस तहज्जुद की तलकीन करते हैं कि इशा के बाद आप सो जाएं और फिर फजर से पहले उठें, ठीक है, और फिर तहज्जुद पढ़ें और फिर उसके बाद जो है ना वो फजर पढ़ें, या ये कि अगर मुमकिन है तो आप उसके बाद थोड़ी सी नींद भी कर लें तो एक और सुन्नत भी आपको मिल जाएगी और फिर उसके बाद आप फजर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तहज्जुद की तलकीन यही होती है, ठीक है। लेकिन जब आप लफ्जी तहकीक में भी जाते हैं और मशाइख की जो है वो दूसरे तहज्जुद की डेफिनेशंस पे भी जाते हैं, जब आप डेफिनेशंस के ऊपर जाते हैं कि भाई लफ्ज ये तहज्जुद फतहज्जद भी नाफिलतल्लक, जो कुरान मजीद के अंदर तहज्जद भी का जो लफ्ज आया है, तो इसका डिक्शनरी इस्तलाही मफहूम क्या है, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम के तआमुल के अंदर और भी क्या क्या सूरतें दाखिल थीं। तो वो और सूरतें जो है ना वो ये भी थीं कि नबी अलैहिस्सलाम रात के शुरू में भी तहज्जुद, यानी ईशा के फौरन बाद भी तहज्जुद, ठीक है, और दरमियान में भी तहज्जुद और आखिर में भी तहज्जुद पढ़ लिया करते थे, ठीक है। और लफ्जी तहकीक भी है, और हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने मेरे लिखा अपनी मारिफुल कुरान के अंदर भी कि भाई यानी तहज्जुद की डेफिनेशन में जो है ना, लफ्ज तहज्जुद का जो इतलाक होता है उसमें रात के किसी भी वक्त में नमाज पढ़ ली जाए तो वो तहज्जुद में दाखिल हो जाते हैं, रात के किसी भी वक्त में, ईशा के बाद से, फजर से पहले, ठीक है, यानी फजर का वक्त शुरू होने से पहले और ईशा की नमाज खत्म होने के बाद जो भी नमाज पढ़ी जाए वो तहज्जुद में दाखिल हो जाती है। ये बात अल्हम्दुलिल्लाह पता है, ठीक है, आपको भी पता होगी, तो वो बेशक अपनी जगह पर है। लेकिन अफजल वक्त जो है जिसके बारे में, और वो क्यों अफजल है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का कसरत के साथ तआमुल जो है वो रात के आखिरी पहर वाली तहज्जुद पे होता था, ठीक है, या नहीं होता था? रात के आखिरी पहर वाली तहज्जुद के ऊपर अक्सरियत के साथ तआमुल होता था, ठीक है। और ये भी कि जो बरकात का नुजूल होता है वो बढ़ता जाता है इशा की नमाज के बाद से, वो नुजूल बढ़ता जाता है और वो जो आखिरी पहर होता है उसमें सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अफजल वक्त तो यानी मुत्तफ़क़ुन अलैह, अफजल वक्त तो वो आखिरी पहर का ही वक्त है, और जब मशायख तहज्जुद की तलकीन करते हैं तो वो अव्वल वक्त की तहज्जुद की तलकीन नहीं करते, वो वही आखिरी वक्त के तहज्जुद की ही तलकीन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इबारत से भी साबित है और बहुत भी यानी बहुत ही आम बात है, ये मशहूर बात है ये, ठीक है। तो इस वजह से इसी के तहत जो है फिर हमने आपको बताया था कि भाई ये वाली जो तहज्जुद है ना, तो वो फिर आपको समर नाइट्स के अंदर, एक तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है कि समर के अंदर नींद की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो ठीक है, आपकी नींद की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो अगर आप मैनेज कर सकती हैं तो समर नाइट्स में भी आप उठ के पढ़ लें, लेकिन नहीं कर सकती हैं तो भाई तहज्जुद को फर्ज ना बनाए ना, ये सुन्नत ही है, ठीक है, तो इसको सुन्नत को फर्ज के दर्जे पर ना बनाए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बात बेशक अपनी जगह पर 100% सही है जो कि हमारे मशाइख ने लिखी, मारफुल कुरान में भी लिखी और दूसरी तफासीर में भी लिखी है कि भाई ईशा के बाद पढ़ लें 2 रिकत या 4 रिकत, ईशा की नमाज खत्म होने के फौरन बाद जो है ना वो तहज्जुद की नियत से पढ़ लें और उसके बाद जो है वो आप अल्लाह ताला से दुआएं मांग लें। बरकात का नुजूल तो उसी वक्त से शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी वो जो खास वाली बरकात होती है ना, रात वाली बरकात, उसका नुजूल तो ईशा के बाद से शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद आप जब भी नेकी का काम करते हैं, आप जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, चाहे वो दोपहर का वक्त क्यों ना हो, तिलावत करेंगे दोपहर के वक्त तो वो अलग बरकात होती है, तिलावत वाली बरकात, जिक्र अस्कार करेंगे तो जिक्र अस्कार वाली बरकात आप दिन में कर रहे हो, सुबह को कर रहे हो, जिस वक्त भी कर रहे हो वो बरकात नाजिल होंगी। ठीक है, झूठ बोलेंगे तो बरकात दूर चली जाएंगी, सच बोलेंगे तो बरकात आ जाएंगी। ठीक है ना, हर नेकी के काम के बाद बरकत आती है, लेकिन एक होती है रात के वक्त की बरकत। जैसे जैसे बरकत जो है वो मस्जिद नबवी पर भी नाजिल हो रही होती है, और बरकत जो है वो मस्जिद हराम पर भी नाजिल हो रही होती है, और बरकत जो है वो आम मस्जिद पर भी नाजिल हो रही होती है। लेकिन फर्क है ना, मस्जिद हराम की बरकत अलग है, मस्जिद नबवी की बरकत अलग है, और आपके मोहल्ले की मस्जिद की बरकत अलग है। उसी तरीके से रात की बरकत अलग है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को बताई थी। बाकी जो फिकी मसला है, तो भाई यहाँ पर फिकी मसले की बात वैसे नहीं कर रहे थे, यहाँ तो हम बरकात और अफजलियत वगैरह की बातें कर रहे हैं। तो अफजल तो अब वही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तब किसी की मजबूरी है, चाहे वो समर नाइट्स की वजह से मजबूरी हो, चाहे जो है वो उसके दिन की मजबूरियात की वजह से मजबूरी हो, चाहे जो है वो अमरीका, कैनेडा, अलास्का में रहने वाली मजबूरी हो, उसकी वजह से फिर वसत है। ठीक है, वसत है, गुंजाइश है। ठीक है, और वो गुंजाइश की वजह से जो है ना वो आपको अफजल नहीं मिल जाता। ठीक है, अफजल वक्त तो वही रहेगा, लेकिन अब अपने अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को ऐसा बना लें तो फिर अल्लाह ताला दे देंगे भाई सवाब। ठीक है, लेकिन ये किताबों में ये चीजें नहीं वो होती है, देखिए ये इतना कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होता, अपने दिल की कैफियत इंसान अल्लाह के साथ ऐसी बनाता है तो फिर अल्लाह ताला उसको बगैर अमल के भी सवाब दे देते हैं, नफली अमल के बगैर भी, फर्ज अमल के बगैर नहीं, नफली अमल के बगैर भी कोई सवाब इंसान को मिल जाता है, अगर वो अल्लाह ताला के सामने रोता धोता है और जो है वो अपनी कमजोरी को, अपनी आजजी को अल्लाह के सामने पेश करता है, तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। बहरहाल, तो ये तो हो गई थोड़ी सी पीछे की बात, अब जो है वो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या लिख दिया कि इसके बाद कजाए उम्री की नमाज भी तहज्जुद में शामिल हो जाती है क्या? इसके बाद कजाए उम्री की नमाज भी तहज्जुद में शामिल हो जाती है? यार ये आप मुफ्ती साहब से पूछ रहे, फिर मैं कोई बोल दूंगा ना तो फिर वो मुफ्ती हजरात को बोला। बहरहाल, आप जाकर फतवा पूछें। कजाए उम्री की नमाज कजाए उम्री पढ़ लेना, वो कजाए उम्री की नियत से पढ़ेंगे ना यार, यहाँ पे तहज्जुद की बात हो रही थी। अब बहरा तो फरमाते हैं कि जी कहाँ तक पढ़ा था, हाँ ये पूरा पढ़ लिया था ना, मोहब्बत जगाती है। अब ये जो है वो इंस्पिरेशनल बातें, ठीक है, कि भैया तहज्जुद का शौक पैदा हो ताकि हम नींद की सुन्नतों पे अमल करना शुरू हो जाए। तहज्जुद का शौक पैदा हो तो तहज्जुद पाने के लिए जो तहज्जुद की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या जो तहज्जुद की क्या कहते हैं प्री रिक्वेस्ट्स होती हैं, ठीक है, तो वो उन पर इंसान अमल करेगा ना। ठीक है, तो मोहब्बत होगी तो फिर वो तहज्जुद भी मिल जाएगी, मोहब्बत ही नहीं है तो तहज्जुद किसी कंपटीशन की वजह से है ना भाई, कि कल मैं सुबह को बता सकूं कि जी मैंने भी तहज्जुद पढ़ी थी, तो तुमने पढ़ी थी? नहीं, मैंने तो पढ़ी थी, तुमने पढ़ी थी? तो ये मोहब्बत खुद मोहब्बत इलाही वाली तहज्जुद तो ना हो ना, फिर ये जो है वो कंपटीशन वाली तहज्जुद हो गई। ठीक है, या ये कि मुझे फील बड़ा अच्छा होता है जब मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, तो ये भी मोहब्बत इलाही वाली तहज्जुद तो ना हुई ना। ठीक है, मतलब तो गुड फील करने के लिए तहज्जुद पढ़ना है, या कुछ और करने के लिए, या ये कि कोई और मसले भी तो होते हैं ना कि काम नहीं करना क्योंकि तहज्जुद पढ़नी है, इस वजह से काम नहीं करना। ठीक है, तो ये सब मोहब्बत इलाही वाली तहज्जुद नहीं है। तो मोहब्बत होगी अल्लाह की तो फिर तहज्जुद भी अल्लाह के लिए बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये फिर हजरत अल्लाह की मोहब्बत वाली तहज्जुद की बातें बता रहे हैं कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक बांदी लेकर आया जो देखने में बहुत कमजोर सी थी, बीमार लगती थी। मैंने कहा कि चलो मेरे घर के कामों में ये मदद कर दिया करेगी। वो मेरे घर आई तो सारा दिन मेरे कामों में मसरूफ रहती, जब रात का वक्त होता तो आकर मुझसे पूछती कि आपको मेरी जरूरत है? अगर मैं कहता कि हाँ तो वो मेरे साथ रात का वक्त गुजारती, और अगर कहता कि जरूरत नहीं है तो वो वुजू करके मुसल्ले पर आ जाती और पूरे रात मुसल्ले के ऊपर इबादत करती रहती। मैं हैरान होता कि ये सारा दिन दुनियावी मालिक की खिदमत करती है और सारी रात अपने मालिक के हकीकी की खिदमत में लगी रहती है। फरमाते हैं कि एक मरतबा वो मेरा बिस्तर बना रही थी तो मुझसे पूछने लगी कि क्या आपका भी कोई मालिक है। मैंने कहा हाँ मेरा भी मालिक है। वो कहने लगा अगर आपका मालिक है तो फिर आप सारी रात उसके सामने सोते क्यों हैं, उसके साथ राज और न्याज की बातें क्यों नहीं करते। तो मुझे वो औरत अजीब सी लगी कि ये कैसी औरत है, ना दिन को सोती है ना रात में सोती है, इबादत ही करती रहती है। एक दिन रात को जो मेरी आंख खुली तो वो तहज्जुद में दुआ मांग रही थी और इस दुआ में कह रही थी ए अल्लाह आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम मेरी ये दुआ पूरी फरमा दीजिए। यानी आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम आप मेरी ये दुआ पूरी फरमा दीजिए। तो मैंने उसको टोका और कहा कि ए लड़की इस तरह दुआ मत मांगो कि अल्लाह आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम, बल्कि यूं दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत रखने की कसम मैं आपसे मोहब्बत करती हूं, या मुझे आपसे मोहब्बत रखने की कसम कि मेरी इस दुआ को पूरा फरमा दीजिए। ठीक है, यानी अदब का तकाजा तो यह है ना कि भाई अपनी बात करें, अपने आप को जो है वो इस तरह से छोटा बना करके रखें कि ये तो नहीं कि अल्लाह की तरफ से कि आपको मुझसे मोहब्बत रखने की पसंद। तो जब मैंने ये बात की तो वो नाराज होने लग गई, कहने लगी कि नहीं मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह आपको मुझसे मोहब्बत रखने की पसंद, और उसकी दलील ये है कि अगर अल्लाह को मुझसे मोहब्बत ना होती तो मुझे सारी रात मुसल्ले पे ना बिठाता और तुझे सारी रात बिस्तर पे ना सुलाता। मुझे जो जगाया है तो मुझसे मोहब्बत है तो जगाया है। यानी आप जो सारी रात सोते रहते हैं तो आपसे अल्लाह को मोहब्बत नहीं है, और मुझे अल्लाह ताला सारी रात जगाते हैं मैं इबादत करती हूँ, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला को मुझसे मोहब्बत है। तो इस वजह से मैं जो ऐसी बात कह रही हूँ ना कि आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम, तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हाल की बातें होती हैं। ठीक है, ये कोई नॉर्मल बातें नहीं होती हैं कि हर बंदा जो है ना वो अब से ये ट्राइयां मारना शुरू कर दे कि सारी सारी रात जागना शुरू कर दे। ठीक है, इबादत करी नहीं जा रही है और पता नहीं, यानी ये हाल जो है ना ये खुद से फोर्स नहीं किया जाता। कहने का मकसद ये है आप इसको फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स तो आप करते हैं तकवा को कि भाई मैंने अपने आप को तौअन औ करहन, ठीक है, तौअन औ करहन, यानी मैं मेरा दिल चाह रहा हो या मेरा दिल ना चाह रहा हो मैंने अल्लाह के हुक्मों को मानना है। ठीक है, और जहां कहीं मुझसे कोताही होगी मैंने तौबा करनी है अल्लाह ताला से। ठीक है, ये होता है अपने आप को फोर्स करना। हाल आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप मोहब्बत की कैफियत मिलनी शुरू हो जाए और जो है वो दिल जारी होना शुरू हो जाए और जो है ना वो फड़कना शुरू हो जाए कुछ, या और इस किस्म के ख्वाब आने शुरू हो जाए या अनवारात नजर आने शुरू हो जाए, ये सारी चीजें जो होती है ना ये इंसान फोर्स नहीं कर सकता। और जो फोर्स करने की कोशिश करता है तो वो मुंह खाता है, उसको नहीं मिलती है सारी चीजें। फोर्स क्या करना है, जो अल्लाह का हुक्म है उसके ऊपर अपने आपको फोर्स करना। ठीक है, बाकी ये जो अहवाल बयान करते हैं ये मोटिवेशनल किस्म की चीजें होती हैं। ये फजाइल अमाल के अंदर भी हजरत ज़करिया रहमतुल्लाह ने इस वाक्य को नकल किया है, जो कि हजरत ने वहीं से मोस्ट लाइकली पढ़ करके फिर अपने बयान में नकल किया करते थे। तो फरमाते हैं कि अल्लाह को जब बंदे से मोहब्बत होती है तो उसको तहज्जुद की जरूर तौफीक दे देते हैं, अताअत की तौफीक देते हैं, अपने दीन की फिक्र की, अपने दीन की खिदमत की तौफीक देते हैं, और फिर साथ साथ जो है वो तहज्जुद की तौफीक भी दे देते हैं। अच्छा, किसी ने यहाँ पे एक दिस इज द लाइन विद व्हाट हजरत जी टोल्ड यू। अच्छा, वो आई डोंट नो व्हाट यू आर। खैर, तो आगे फरमाते हैं कि आम लोग 5 नमाजों का एहतमाम करते हैं और जो मोहब्बत के रास्ते का सफर करने वाले सालिक होते हैं वो तहज्जुद का एहतमाम भी इसी तरह करते हैं जिस तरह आम लोग फर्ज नमाजों का एहतमाम करते हैं।
अल्लाह ताला हमें रात की इबादत की भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी नींद में बरकत डाल दे। फिर अल्लाह ताला अल्लाह वालों का नींद पर कंट्रोल। तो फरमाते हैं कि हमारे हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक दफा मैं सफर के बाद जब आया तो बहुत थका हुआ था और नींद गालिब थी। मैंने कहा कि मैं सो जाता हूँ। मैं जब सोया तो मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मैंने ख्वाब देखा, कोई कह रहा था हम ही सुलाते हैं और हम ही जगाते हैं। फरमाते हैं कि मेरी आंख खुल गई और मैं बिल्कुल फ्रेश था। फिर मैंने वजू किया और देखा कि मेरी नींद सिर्फ 10 मिनट की थी। अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल होती है तो अल्लाह ताला इंसान की नींद ऐसी कर देते हैं कि 10 मिनट में उसका साइकिल मुकम्मल होने के बाद वो बंदा बिल्कुल तरोताजा उठ जाता है। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरी नींद तो मुर्गे की नींद है। मुर्गे को देखा कि वो चल रहा होता है तो चलते चलते एक कदम आगे बढ़ाता है और खड़े खड़े ही थोड़ी देर सो जाता है और फिर चलना शुरू कर देता है। यानी चलता है और एकदम से ना आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो सो रहा है। ठीक है, तो उसी को तमसीलन बयान कर दिया कि गोया कि वो अपनी नींद पूरी कर रहा है। ठीक है, तो हजरत फरमाया करते थे कि मेरी नींद भी ऐसे ही है, यानी जैसे चलते चलते खड़े खड़े ही सो गए और फिर उसके बाद चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो खड़े खड़े नहीं सोते थे, वो जाहिर बिस्तर पर लेट करके ही सोते थे लेकिन थोड़ी सी देर के लिए। तो अल्लाह ताला को अल्लाह ताला तो अल्लाह वालों को अल्लाह ताला नींद पर ऐसा कंट्रोल दे देते हैं कि वो कई दफा कहकर सोते हैं कि मैं 15 मिनट के लिए सो रहा हूँ और उनके जिस्म में ऐसी क्लॉक फिट होती है कि 15 मिनट में नींद भी मुकम्मल होती है और वो खुद ब खुद उठ भी जाते हैं। जैसे कि हजरत ने पीछे बयान में भी खुद ही फरमाया था कि ये जो है ना वो पावर नैप कहलाती है। आजकल अंग्रेजी जुबान के अंदर इसको पावर नैप का नाम दे दिया और साइंसदानों ने अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए से इसको वो भी कर लिया, यानी वो जो आलात वगैरह लगा करके और ईईजी वगैरह करके ये भी डिटरमिन कर लिया कि भाई अच्छा ये इतना जो टाइम होता है ना पावर नैप का, तो इसके अंदर जो है वो आप N1 और N2 मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है, तो N1 N2 का टाइम जो है ना वो इतना ही होता है, 10, किसी का 10 मिनट होता है, किसी का 20 मिनट होता है। ठीक है, तो उसके अंदर उसकी पावर नैप हो जाती है। फिर उसके बाद N3 में दाखिल होने से पहले ही वो उठ जाता है। अगर N3 में चला जाए तो फिर मुकम्मल N3 मुकम्मल करके ही उठेगा। ठीक है, ये भी अल्लाह ही का बनाया हुआ निज़ाम है, ये साइंसदानों का बनाया हुआ निज़ाम नहीं है। ठीक है, साइंसदानों ने तो सिर्फ उसको अपने जो जो आलात हैं वो लगा करके देखा है। ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी वगैरह, हार्ट एक्टिविटी वगैरह को मेजर करके उन्होंने देखा है और उन्होंने फिर अपनी किताबों में लिख दिया है। बनाया को थोड़ी है उन्होंने, बनाया किसने, जिसने सबको बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो कौन है, वो एक ही है अल्लाह, अल्लाह वालों का अल्लाह और गुनाहगारों का अल्लाह, राइट, मर्द औरत का अल्लाह, बूढ़े बच्चे का अल्लाह, वो एक ही अल्लाह है। ठीक है, जिसने ये निज़ाम बनाया है, ये साइंसदानों ने नहीं बनाया और ये मौलवियों ने भी नहीं बनाया और ये पीरों ने भी नहीं बनाया और ये अल्लाह वालों ने भी नहीं बनाया, राइट? अल्लाह वालों ने बनाया? नहीं, अल्लाह वालों ने नहीं बनाया, ये अल्लाह ने बनाया। ठीक है, तो अल्लाह वाले जो ना अल्लाह के निजाम को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ये बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो अब उसके अंदर से जो है ना वो फिर अल्लाह ताला उनमें उनकी नींद में बरकत डालते हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो तौफीक अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने कामों के अंदर मशगूल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को अल्लाह ताला की बंदगी में लगाते हैं। जो काम भी करते हैं, चाहे दुकान पे बैठे हुए हों, चाहे जो है वो किचन में खड़ी हुई हो, वो अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी नहीं करते और अगर हो जाए तो फौरन तौबा कर लेते हैं, अल्लाह ताला से माफी मांगते रहते हैं, रीडिफाइन नहीं करते चीजों को ना। ठीक है, ना अल्लाह के निजाम को रीडिफाइन करते हैं, ना अल्लाह के हुक्मों को रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ना सुन्नतों को रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो अपने आप को रीडिफाइन करते हैं कि भाई मैं पहले गुनाहगार था, अब मैं नेकोकार बन जाऊं, वो अपने आप को रीडिफाइन करते हैं। ठीक है, तब वो अल्लाह वाले बनते हैं, दीन को रीडिफाइन करके नहीं। तो फरमाया कि तो अल्लाह वालों को अल्लाह ताला नींद पर ऐसा कंट्रोल दे देते हैं कि वो कई दफा कहकर सोते हैं कि मैं 15 मिनट के लिए सो रहा हूं और उनके जिस्म में ऐसी क्लॉक फिट होती है कि 15 मिनट में नींद भी मुकम्मल होती है और वो खुद ब खुद उठ भी जाते हैं।
जिक्र से नींद पर कंट्रोल। तो फरमाते हैं कि नींद का ये कंट्रोल इंसान को जिक्र की वजह से हासिल होता है, ठीक है। नींद का ये कंट्रोल इंसान को जिक्र की वजह से हासिल होता है। जितना जिक्र करते ज्यादा करते जाएंगे उतनी नींद कम होती जाएगी और इंसान तरोताजा उठेगा, ठीक है। यानी जितना अल्लाह को याद करेंगे, ये एक तरह का जिक्र होता है अल्लाह को याद करना, और दूसरी तरह का जिक्र आप बता दें, एक होता है अल्लाह को याद करना, ये जिक्र होता है, और दूसरा जिक्र क्या होता है? जी बेशक, ठीक है। दूसरा जिक्र होता है अल्लाह को याद रखना, ठीक है। अल्लाह को याद रखना, फर्क क्या है दोनों के अंदर? अगला सवाल, ठीक है। एक सवाल का सही जवाब देंगे तो फिर अगला सवाल आएगा, वो है ना, मकतबा इश्क के अंदाज निराले देखे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो जो सबक, जो सवाल का सही जवाब देता है ना, उससे फिर दूसरा सवाल किया जाता है, छुट्टी नहीं दी जाती उसको, ओके। दूसरा सवाल किया जाता है, सही है। तो दूसरा सवाल ये है कि फर्क क्या है दोनों में, अल्लाह को याद करने में और अल्लाह को याद रखने में? वैसे जिक्र कल्बी भी सही जवाब था। अच्छा, उन्होंने लिखा कि जब अल्लाह को याद रखते हैं तो हर अहवाल उसकी रजा के लिए और गुनाहों से बचने के लिए होता है। ठीक है, तो अल्लाह को याद करना जो है ना, ये जो जुबान से आप पढ़ते हैं ना, अल्लाह 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 कर रहे हैं, या वो तो खैर वो तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, ठीक है, या जो है वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, या जो है वो तस्बीहात पढ़ रहे हैं, ठीक है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ठीक है, ये सब जो है ना वो अल्लाह को याद कर रहे हैं एक्टिवली, ठीक है, हत्ता के इवन अल्लाह के दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं, हदीस मुबारक का इल्म हासिल कर रहे हैं, ये सब भी जिक्र में आता है, ठीक है। और एक होता है अल्लाह को याद रखना, क्या मतलब कि जुबान से तो आप भाव ताव कर रहे हैं, जुबान से तो आप बोल चाल कर रहे हैं, जुबान से तो आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है, हत्ता के अगर आप रेड़ी वाले हैं तो रेड़ी के ऊपर टमाटर ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, ये आवाजें लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी किसी सूरत नहीं कर रहे। यानी ऐसा नहीं है कि बाजार में जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और आपकी निगाह, जुबान से तो ग्राहक से बात कर रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, और निगाहें जो है वो अल्लाह की नाफरमानी कर रही है, ठीक है, निगाहें अल्लाह की नाफरमानी कर रही है यानी बदनजरी कर रही है, ठीक है। या ये कि जुबान से ग्राहक के साथ जो कर रहे हैं बात, उसमें झूठ बोल रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की बुराइयों को छुपा करके उसकी जो है ना वो जो खूबियां नहीं है वो खूबियां झूठ बोल बोल करके उसको बयान कर रहे हैं, नहीं बल्कि जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, ताजुर ताजुर सुद्दुकुल अमीन, अमानतदारी का मामला कर रहे हैं, सच का मामला कर रहे हैं, तो अल्लाह को याद रखे हुए हैं, अल्लाह को याद रखे हुए हैं, ये जिक्र कल्बी होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है ना वो यानी आंख के यानी जुबान से नहीं कह रहे होते हैं ना कुछ, तो दिल फिर आज़ा को कंट्रोल कर रहा होता है कि अल्लाह की नाफरमानी ना मेरी जुबान से हो, अल्लाह की नाफरमानी ना मेरे आंखों से हो, ना कान से हो, ना किसी और तरीके से हो, ठीक है। तो ये होता है जिक्र, ठीक है, और वो जो जिक्र होता है जो कि जुबान से आप किए कर रहे होते हैं, जिक्र लिसानी भी जिसको कहते हैं, तो जो अल्लाह ताला को याद करता है और याद रखता है, याद रखना 24 घंटे का है, याद करना ये सिर्फ आप जिस वक्त फारिग होते हैं ना उसी वक्त कर सकते हैं, जब आप जरूर याद से फारिग हो जाते हैं
तो उस वक्त बैठ करके जो है वो तस्बीह करना और जो है वो तिलावत करना, ठीक है, तो वो तो एक मुख्तसर टाइम के लिए होता है, लेकिन याद रखना 24 घंटे के लिए होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर जो बात हजरत फरमा रहे हैं ना कि नींद का ये कंट्रोल इंसान को जिक्र की वजह से हासिल होता है, तो ये याद रखने वाले जिक्र की वजह से, ठीक है, और याद करने वाला भी कि जिसमें भी अपने मामूलात की पाबंदी कर रहे हैं तो वो भी, लेकिन असल में याद रखने वाला जिक्र। तो जितना ज्यादा अल्लाह को याद रखते चले जाएंगे तो उतनी नींद जो है ना वो कम होती चली जाएगी और इंसान तरोताजा उठेगा। क्यों? इसलिए कि इंसान का जो जिस्म है ना वो इंसान के, यानी इंसान के तहत है ना एक चीज, ठीक है, तो जब हम ऊपर वाले की इज्जत करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले के, अपने ऊपर, हमारे ऊपर कौन है? अल्लाह, ठीक है, और फिर अल्लाह के रसूल जो है वो भी हमारे ऊपर ही है, लेकिन उनके वास्ते से हम अल्लाह ताला के अहकाम को जानते हैं, और तो अल्लाह के रसूल की इज्जत करना और अल्लाह की इज्जत करना ये सब ऊपर वालों की इज्जत कहलाएगी ना, ठीक है। तो जब हम ऊपर वालों की इज्जत करते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला हमारे नीचे वालों को हमारी इज्जत करने के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। जब हम ऊपर वाले की इज्जत नहीं करते और खाली ये डिमांड करते हैं कि नीचे वाला मेरी इज्जत क्यों नहीं करता, नीचे वाला मेरी इज्जत क्यों नहीं करता, तो ये वक्त जाया कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है ना फिर हमारे जिस्म को, जो कि हमारे नीचे वाली चीज है ना, हमारे तहत वाली चीज है, तो उसको फिर हमारे हमारे इख्तियार में दे देते हैं एक तरह से, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमें इख्तियार उसके ऊपर मिल जाता है, तो जाहिर है फिर नींद का ताल्लुक जिस्म के मामूलात के साथ है, तो वो कंट्रोल मिल जाता है, तो इतनी नींद कम होती जाएगी और इंसान तरोताजा उठेगा। जितना इंसान में गफलत ज्यादा होगी, किसके साथ, किसकी गफलत? अल्लाह की गफलत, ठीक है, कि अल्लाह ताला से गाफिल होकर के अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, तो उतनी नींद बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। नींद और लस्सी की मिसाल एक जैसी है, लस्सी को जितना पतला करना चाहो ना वो इतनी पतली होती चली जाती है, यानी पानी डालते जाओ लस्सी के अंदर वो और पतली होती चली जाएगी, और नींद को भी जितना लंबा करना चाहो हो जाएगी। 15 घंटे सोकर भी आप कहेंगे कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, और अगर जिक्र की कसरत होगी तो अल्लाह ताला थोड़ी नींद में बरकत डाल देंगे और इंसान ताजा दम उठेगा, ठीक है। तो थोड़ी नींद से यहाँ पे क्या मुराद है कि जितनी एवरेज नींद होती है ना एक आम आदमी की, तो वो थोड़ी नींद कहलाएगी, और उस एवरेज से ज्यादा नींद जो है ना वो फिर ज्यादा नींद कहलाएगी, ठीक है। वो एवरेज नींद जो है वो 7 to 8 आवर्स है, और फिर उसके बाद जो कम नींद वाले लोग होते हैं वो फिर एवरेज नहीं होते, वो फिर स्पेशल केसेस होते, ठीक है। तो वो स्पेशल केसेस में कुछ अल्लाह ताला ने बॉडीज भी ऐसी बनाई होती हैं कि जिनकी एवरेज नींद ही जो है ना वो 6 to 7 आवर्स होती है, 7 to 8 नहीं होती बल्कि 6 to 7 होती है, बट वो एक्सेप्शन में आता है, वो एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। उसी तरीके से यानी ओवर जेलस, ओवर यानी अचीवर्स टाइप के कुछ कुछ लोग होते हैं, तो वो फिर उनकी भी एवरेज नींद अगर कम हो जाती है तो वो भी एक्सेप्शन में आएंगे, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो जो नॉर्मल नींद की बात हो रही है ना, वो वही नॉर्मल नींद है जो कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडीज की बनाई है, और जो लंबी नींद की बात हो रही है वो उससे ज्यादा की बात हो रही है, वो उससे ज्यादा की बात हो, ठीक है। ये हम इसको हम ना रीडिफाइन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हम नहीं कर सकेंगे उसको रीडिफाइन, हम नहीं कर सकेंगे उसको रीडिफाइन, ठीक है। जो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने का दिन था ना, जैसे कि वो आपके सामने दज्जाल वाली हदीस भी बयान करी थी ना, ठीक है, कि दज्जाल वाली हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, कय्यौम कुम, यानी सहाबा का एक दिन होता था, ठीक है, सहाबा का एक दिन होता था ना, वो असल दिन था, यानी सहाबा के जमाने का जो दिन था वो असल दिन था, ठीक है, यानी इशा के बाद का सोना और तहज्जुद के बाद का उठना। जिस जमाने में हम रह रहे हैं ये सहाबा के जमाने वाला दिन नहीं है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल लाइटिंग वाला दिन है, और इससे जो है ना वो नींद का साइकिल, सारा सिस्टम खराब कर दिया गया है, लेकिन हमारे बॉडीज चेंज नहीं हुई है, हमारी बॉडीज वैसी की वैसी हैं, बल्कि और हमारे अंदर
यानी फिजिकल वीकनेस आ गई है, फिजिकल वीकनेस। कोई इसका इनकार कर सकता है कि नहीं, फिजिकल वीकनेस नहीं आई हमारे अंदर? भाई वो घोड़े पे सवार होकर के एक हाथ में नेजा एक हाथ में तलवार है और जो है वो भाग रहे होते थे, दौड़ रहे होते थे, आज जो है वो कोई करके दिखाए जरा, ठीक है ना? सिवाय चंद एक्सेप्शंस के कोई नहीं कर सकता इस तरीके से, फिजिकल फाइटिंग तो कर ही नहीं सकता ना, सिवाय वो पहलवानों के जो कब। तो अब तो वो ये अम्मा क्या कहते हैं, वो हमारे हमारे करते थे ना जी, के जरा एक सात चक्कर के बाद अगर दो सात चक्कर का तवाफ कर लिया ना, तो वो सुबहान रबी आला की बजाय जो है ना, वो जुबान से वही अल्लाह निकल रहा होता है, ठीक है? क्योंकि तवाफ बस कमजोर हो गया ना, तो कवा भी कमजोर हो गए और पूरा का पूरा यानी सिस्टम ही उलट के रख दिया गया। तो अब हमारे करने का क्या काम है? हमारे करने का वही काम जो आपके सामने हम कई दफा इस क्लास में बयान कर चुके हैं कि भाई हम गलत को गलत समझें, गलत को गलत कहें, रीडिफाइन करने की कोशिश ना करें, ठीक है? रीडिफाइन करने की कोशिश ना करें, जो गलत है उसको गलत ही कहें। हाँ ठीक है, हमसे हो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन रीडिफाइन थिंग्स, ठीक है? अब मुफ्ती हजरात थोड़े माशाल्लाह, वो चूंकि उनका एक अलग नजर होती है, वो उनको फतवे देने होते हैं ना, तो भाई वो फतवे के अंदर वो जो बात करते हैं ना कि भाई शरीयत के अहकामात जो हैं वो जमाने के अहवाल के हिसाब से बदल जाते हैं, ठीक है? तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाली बात को सुनकर के। भाई वो मुफ्ती हजरात का फतवा देना कि भाई कोई ऐसे एक्सेप्शनल केस आ गई है तो उसके अंदर जो है वो फलाने अमल की गुंजाइश किसी वजह से बन रही है, ठीक है, तो भाई उसको आप रीडिफाइन करने से कंफ्यूज नहीं कर सकते ना चीजों को। ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आपके नहीं समझ में आएगा, बेशक मैं अंदाजा है कि आपको शायद ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो इस वजह से बस इतनी बात बता रहा हूं कि मुफ्ती हजरत अगर कभी अहवाल के हिसाब से ये बात करते हैं ना कि शरीयत के अहकाम जो है वो उसके मुताबिक मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, और वो बिल्कुल सही चीज है जो वो कह रहे हैं, हम उसको गलत नहीं कह रहे, ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को समझे, वो एक डिफरेंट पस मंजर में बात हो रही होती है, और हम जो बात कर रहे हैं यहां पर इन डिफरेंट पस मंजर में बात कर रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ पे कोई हराम का फतवा नहीं दे रहे बैठ करके, ठीक है, और हम कोई इस किस्म की बात नहीं कर रहे हराम पे, हम बस इतना कह रहे हैं कि भाई डोंट बी सेटल्ड, ठीक है? ये जो एक है ना कि भाई अब क्या करें, अब तो जी बस चूंकि निजाम बन ही गया है तो अब जो है ना वो हम इसी को ठीक कहना शुरू कर देते हैं, इसी को सही बोलना शुरू कर देते हैं और बस, ठीक है ना? यानी कोई इस्तेराब, कोई तकलीफ, कोई फिक्र वो खत्म करके ना समझे कि भाई गोया के अगर आप सही मानो में, अगर आप जन्नत में नहीं पहुंच सकते तो आप तसव्वुर करेंगे जैसे आप जन्नत में पहुंच गए, ठीक है, तो तसव्वुर करने से जन्नत बन जाएगी? नहीं, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, ये वो वाली बात नहीं है। इस्तेराब होना चाहिए कि भाई जो चीज गलत है मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैं उसको गलत तो समझू ना, और अल्लाह ताला से दुआ तो करूं कि अल्लाह आप, मैं नहीं बदल सकता, आप तो बदल सकते हैं, अल्लाह आप बदल दीजिए, आप इसको आसान कर दीजिए, और जो अपने हालात हैं उसमें जो चीज कर सकते हैं वो हम करें, जो हमारे करने का काम है, जो हमारे बस में है वो हम करें, और बाकी अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें, ठीक है? लेकिन गलत को सही नहीं कहना शुरू कर दें। हम मुफ्ती वैसे भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वो मुफ्ती को अपना काम करने दें भाई, वो मुफ्ती का काम है कि वो शरीयत के जो है ना वो बयान करते हैं, वो उसका करने का काम है, उसको करने दें, उसको करने की जरूरत है, दिस इज व्हाट ही इज बीन टॉट टू डू। हम बैठ के मुफ्ती नहीं बनना शुरू हो जाए ना, ठीक है, क्योंकि हम अगर रीडिफाइन करेंगे चीजों को तो हमें और मुफ्ती में क्या फर्क है, हम में और मुफ्ती में क्या फर्क है, चले बताएं जी क्या फर्क है हम में और मुफ्ती में? वो शरीयत के जो अहकामात हैं वो अहवाल के हिसाब से फिर वो नया फतवा लगाते हैं ना, ठीक है? मैं कहूं कि जी मैं क्यों नहीं लगा सकता ये नया फतवा,
अहकामात के हवाले, यानी अहवाल के हिसाब से मैं क्यों नहीं नया फतवा लगा सकता, तो उसका क्या जवाब देंगे आप? क्या फर्क है मुझमें और मुफ्ती में? जल्दी बताएं। क्या फर्क है भाई, मुफ्ती फतवा लगा सकता है, मैं क्यों नहीं लगा सकता, आप क्यों नहीं लगा सकते? इल्म का फर्क है। एग्जैक्टली, यही तो फर्क है, इल्म का फर्क है ना भाई। भाई आप इल्म हासिल कर लें, आप दारुल इफ्ता में चले जाएं, आप जो है वो किसी मुफ्ती साहब के साथ बैठ करके जो है वो सारी किताबें पढ़ लें, तो आप भी मुफ्ती बन जाएंगी, है ना। मर्द भी मुफ्ती, मर्द तो मुफ्ती होते ही हैं, लेकिन कुछ औरतें भी मुफ्तियां बन जाती हैं भाई। कैसे बनती हैं? मुराकबे करके तो नहीं बनती है ना, तस्बीह फेर के तो नहीं बनती ना, खाने पका के तो नहीं बनती है ना। कैसे बनती हैं? इल्म हासिल करके बनती है ना। तो भाई इल्म के साथ फतवा लगाया जाता है ना, तो वो इल्म वाले हैं तो वो फतवा लगा रहे हैं। हम बैठ करके बगैर इल्म के जो फतवा लगाना शुरू कर दें तो वो तो फिर फतवा नहीं होगा ना, फिर तो वो यानी गुनाह होगा ना बेसिकली वो तो फिर। ठीक है, तो हमारा काम जो है ना वो है मुस्तरिब रहना, फतवे लगाना नहीं कि भाई अब रिडिफाइन हो गया है, अब जो है वो जमाना चेंज हो गया तो अब ये हो गया। नहीं, हमारा काम है कि जो सही था उसी की तलब दिल में रखना, ठीक है, उसी के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करना, और अपने बस में जो मुमकिन है वो करना। ठीक है, तो नींद का निजाम जो है वो जो खराब हुआ हुआ है, जिस तरह तालीमी निजाम खराब हुआ हुआ है, हम तालीमी निजाम को अच्छा नहीं कह सकते। हाँ, मुफ्ती साहब ने फतवा दिया कि हाँ जी, चूंकि अब तालीमी निजाम पूरी दुनिया का खराब हो चुका है, तो अब जो है ना वो कमाई के जिनको जरिए सीखने हैं उनको इसी तालीमी निजाम में जा करके पढ़ना होगा, उनका इसी तालीमी निजाम में पढ़ना हराम नहीं कहलाएगा। ठीक है ना भाई, ये होता है फतवा। मुफ्ती साहब ने ये कहा कि भाई के चूंकि अब कमाने के जराए जो हैं, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको पायलट, औरतों की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मर्दों को तो कमाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई है ना, तो उनको कमाने के लिए कोई ना कोई तो हुनर सीखना है ना, तो वो इसी लॉर्ड मुकाले वाली यूनिवर्सिटी में जाकर के उसको ये सीखना पड़ेगा। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई बेशक वो काफिर का बनाया हुआ निजाम है, बेशक जो है वहां पर बेहयाई भी होती है, बेशक वहां पर जो है वो अल्लाह के खिलाफ भी चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं, लेकिन कमाना जो है ना ये तो अभी भी जरूरत है ना हमारी, तो इस वजह से इन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना हराम नहीं होगा। ठीक है, तो मुसलमान नौजवान जो है वो इन्हीं यूनिवर्सिटी में जा करके ये चीजें पढ़ेंगे, हराम नहीं होगा ये। ठीक है ना भाई, ये फतवा आ गया मुफ्ती साहब का। ठीक है कि भाई जाके पढ़ सकते हैं उसके अंदर और कमाई का सिलसिला सीख सकते हैं, लेकिन इस फतवे को देख करके अब हम अपनी तरफ से फतवा लगा दें कि इसका मतलब यह है कि देर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस तालीमी निजाम, दिस इज परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं है इस तालीमी निजाम के साथ, बल्कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और कोई मसला है ही नहीं इसके अंदर। नहीं, एब्सोल्यूटली नॉट, हमें इस तालीमी निजाम को गलत ही कहना होगा, बेशक हम खुद भी जाके अगर पढ़ रहे हो ना, फिर भी उसको गलत कहना होगा। ठीक है ना, तो फतवे से जो एक गुंजाइश निकली है तो वो फिर इसी सूरत हाल में ही मुकैद होगी भाई, चूंकि देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, दैट्स वाई, और वो इसको इसी सूरत में बंद किया जाएगा। ये नहीं कि अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आ जाए, नेक लोगों की बनाई हुई यूनिवर्सिटीज भी आ जाएं जिनमें बिल्कुल अल्लाह वाला निजाम भी मौजूद हो तालीम का, तो अब जब वो ऑल्टरनेट मौजूद है और आसानी के साथ आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, तो फिर आपको वहीं पे जाके पढ़ना होगा, अपने नौजवानों को वहीं पे जा करके पढ़ाना होगा। ठीक है, तो यही यही नींद का भी निजाम, यही भी जो है वो दिन रात का भी निजाम है। दिन रात का निजाम जो है वो पूरा उलट पुलट होकर रह गया, अब इसको आप ठीक नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज यू नो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप ठीक, भाई ठीक है, अब ऑप्शन नहीं है तो इसी में गुजारा करना है, इसी के अंदर जितना कर सकते हैं उतना करना है। बहरहाल, तो चूंकि आज का ये मौजूद खत्म भी करना है, 10 मिनट पहले ऊपर हो गया, तो हम जल्दी से आखिरी पैराग्राफ पढ़ के इसको आज
निपटा रहे हैं कि नींद को मुनज्जम करके पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। औरतों को चाहिए, क्योंकि ये औरतों के बयान थे, कि वो अपनी नींद को इस तरह से मैनेज करें कि उनकी इबादत भी हो और उनके दुनिया के जो काम हैं वो भी अपने वक्त पर मुकम्मल हो। अल्लाह ताला दुनिया में हमें सुकून की नींद अता फरमाए और इस मुसीबत से बचाए कि इंसान सोना चाहे और उसको नींद ना आए। ठीक है, यानी स्लीप डिसऑर्डर वाली जो मुसीबत है, अल्लाह ताला उससे सबको बचाए। बुढ़ापे के अंदर ये एक बड़ी बीमारी है कि जिसकी वजह से इंसान दिन में भी परेशान रहता है और उसकी रात भी जागते गुजर जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नींद की एक नेमत बनाई है, अल्लाह ताला ने जागने की नेमत अता फरमाई है, अल्लाह ताला अपने वक्त पे पुरसुकून नींद सोने की भी नेमत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुढ़ापे का जो मसला हजरत ने लिखा, तो ये तभी तौर पर इंसान के अंदर बुढ़ापे में आती हैं, जैसे हमने इसी बयान के शुरू में वो जो साइकिल्स ऑफ लाइफ पढ़े थे, तो वो थे ना कि 7-7 साल के जो साइकिल्स होते हैं, तो फिर वो बुढ़ापे वाले साइकिल 60 से जो शुरू होते हैं, तो उसमें फिर तभी तौर पर इंसान भूलना भी शुरू कर देता है। नींद का भी निज़ाम उसका, यानी अच्छे जमाने के लोगों का भी नींद का निज़ाम खराब हो जाता था बुढ़ापे में। तो अब उसका क्या हाल है? उसका ये नहीं है कि आप पढ़े रहें या आप जो है वो यानी टीवी देखते रहें, अब रात को नींद नहीं आ रही, बूढ़े हो गए, नींद नहीं आ रही, तो आप टीवी ऑन कर दिया या म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया या ऐसे ही बस जो है वो पड़े हुए हैं, बल्कि जो जवानी में इबादत का शौक अपने अंदर पैदा कर लेता है ना, तो फिर बुढ़ापे के अंदर जब उसको नींद नहीं आ रही होती है ना, तो उसमें फिर वो इबादत बढ़ा देता है। ठीक है, कि मैं सो नहीं पा रहा हूं तो मैं अल्लाह की इबादत कर लूं, मैं जिक्र कर लूं, मैं तस्बीह पढ़ लूं, मैं कुरान मजीद की तिलावत कर लूं, मैं मुराकबा कर लूं। ठीक है, तो इसके लिए तो फिर जवानी में जो तैयारी करता है तो उसका बुढ़ापा हसीन हो जाता है, और जिसने जवानी में अपना वक्त जाया किया होता है, तो फिर बुढ़ापे में वो फिर सोशल मीडिया लेके बैठा हुआ होता है, फेसबुक की छड़ी उसके हाथ में होती है, और सर जो है ना वो उसका व्हाट्सएप का वो जो ग्रीन सिंबल होता है ना, वो उसका सर होता है। ठीक है, इधर से वीडियो आई, उधर फॉरवर्ड करी, उधर से वीडियो आई, इधर फॉरवर्ड करी, ये उसका बुढ़ापा होता है। कितना बुरा बुढ़ापा है ये ना। ठीक है, कि रात को नींद नहीं आ रही तो आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर टाइम खर्च कर रहे हैं और गुनाहों की चीजें देख रहे हैं और गुनाहों की चीजें सुन रहे हैं, बल्कि सारी दुनिया में गुनाहों को जो है वो वायरल कर। अल्लाह ताला ऐसे बुढ़ापे से हम सब की हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।